lives, looking for a place to rest. I come to your feet. Your silence showers me with blessings. Now I can sing songs of awakening. Oh, how I love to hear their sweet melodies. So deep, or strong enough to waken me from my ancient sleep. You, like a master key, unlocking all life's mysteries, revealing to me songs of awakening. Oh, how I love to hear their sweet melodies.
नमस्ते फ्रेंड्स, ओशो रेडियो के द्वारा हम सब तक पहुंच रहे साइलेंट सॉन्ग्स, साइलेंट म्यूजिक और इस साइलेंस से उठ रहे डांस के प्रोग्राम में हम सब का हार्दिक स्वागत। आज के एपिसोड में प्रवचन पद घुंघरू बांध वॉल्यूम नंबर 18 से लिया गया है।
पहला प्रश्न, मैं असहाय हूं, मैं बेबस हूं, मैं क्या करूं? असहाय हो, बेबस हो, फिर भी कुछ करना चाहते हो। असहाय हो, बेबस हो, अब तो करना छोड़ो। कृत्य पर भरोसा कब छोड़ोगे? कृत्य पर भरोसा छूट जाए तो जो होना है अभी हो जाए। मीरा की सुनो, करने से ही परमात्मा मिलता होता तो मिल ही नहीं सकता था। आदमी की करने की बड़ी सीमा है, जो कर सकते हैं उनका करना भी क्षुद्र है। आदमी कर ही क्या सकेगा? हाथ छोटे, चांद तारों की तरफ बढ़ा सकते हो लेकिन पा थोड़ी पाओगे, और चांद तारों की तरफ बढ़े हुए हाथ सिर्फ तुम्हारी भूख की खबर देते, तुम्हारे प्यास की खबर देते, और जितने तुम हाथ बढ़ाओगे उतने तुम विषाद से भर जाओगे, क्योंकि हाथ बढ़े रह जाते, पहुंचते नहीं। हाथ छोटे, जिस दिन तुम्हें ये ठीक ठीक समझ में आ जाए कि मैं असहाय हूं, उस क्षण तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, और कुछ भी करने को नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम आंसू लाना, लाए गए आंसू दो कौड़ी के, लाए गए आंसू तो अभी नहीं। मैं कह रहा हूं आंसू आएंगे जब तुम परिपूर्ण असहाय अवस्था को समझोगे, मझधार में डूबते हुए न ये किनारा दिखाई पड़ता न वह किनारा दिखाई पड़ता। सहारों की कौन कहे, तिनकों का सहारा भी नहीं, कोई आशा नहीं, सब तरफ अंधकार है और निराशा है। उस परम हताशा की दशा में आंसू आएंगे, अपने से आएंगे, सारा प्राण आंसू बन जाएगा। वैसे ही आंसू प्रार्थना बनते, प्रार्थना की नहीं जाती, होती है। आह उठेगी, तुम उठाओगे ऐसा नहीं, तुम्हारी उठाई आह का क्या मूल्य हो सकता है? तुम्हारे बावजूद उठेगी, तुम ना भी उठाना चाहो तो उठेगी, वही आह प्रार्थना बन जाती। तुम कहते तो हो कि मैं असहाय हूं, मैं बेबस हूं, लेकिन सुनी सुनाई कहते हो, तुमने बात गुनी नहीं, तुमने बात पर बहुत ध्यान नहीं दिया। ये बात तुम्हारे अनुभव से नहीं आती, नहीं तो फिर तुम ये ना पूछते कि मैं क्या करूं। करने में तो बल है, करने में तो अभी भरोसा कायम है, करने में तो अहंकार है। करने वाला सोचता है शायद अभी जिस ढंग से कर रहा था वो ढंग गलत था, तो नए ढंग से करूंगा, जिस राह से चलता था वो राह गलत थी, तो नई राह खोज लूंगा। ये असहाय अवस्था नहीं है। असहाय अवस्था का अर्थ ही यही है कि मैं किसी भी राह से चलूं तो मैं ही चलूंगा ना, मेरे पैर छोटे, मेरी क्षमता छोटी, ये राह की गलती नहीं है, मैं पहुंच ही नहीं सकता, मेरी तरह मैं पहुंच ही नहीं सकता। ये विधि की गलती नहीं है, विधान की गलती नहीं है, मार्ग की गलती नहीं, शास्त्र की गलती नहीं, मुझे ठीक शास्त्र मिल जाए तो भी नहीं पहुंच सकता, मुझे ठीक मार्ग मिल जाए तो भी नहीं पहुंच सकता, मैं ही कमजोर। जब ऐसी प्रतीति होती कि मैं ही कमजोर हूं, तुम गिर जाते एक ढेर की तरह, उसी ढेर से उठती है प्रार्थना की नहीं जाती, उसी ढेर में भक्ति का आविर्भाव होता है। उसी ढेर में तुम गिर पड़े ढेर की तरह। परमात्मा तुम्हें तलाशता आता है। जब तक तुम्हें यह अस्मिता है कि मैं कुछ कर लूंगा, तब तक परमात्मा सोचता है अभी तुम कर ही रहे हो, अभी बीच में बाधा देने की जरूरत भी क्या है। मुझे बड़ी प्यारी कथा है जिसको मैं निरंतर कहता हूं। कृष्ण भोजन को बैठे, एक कौर मुंह में लिया है, दूसरा लेने को है कि छोड़ के उठ खड़े हुए। रुक्मणी पंखा झलती है, उसने पूछा कहां जाते, लेकिन उत्तर भी ना दिया, भागे द्वार की तरफ। लेकिन फिर दहरी पर ठिटक के खड़े हो गए, लौट आए उदास, फिर थाली पर बैठ भोजन करने लगे। रुक्मणी ने कहा आप अचानक भागे, उससे तो मन में बड़ा प्रश्न उठा था कि क्या हुआ, किस लिए जा रहे हैं, जैसे कहीं आग लग गई हो। उत्तर देने का भी आपके पास समय नहीं था, मैंने पूछा कहां जाते हैं, थाली अधूरी छोड़कर, उत्तर भी नहीं दिया, उससे तो प्रश्न उठा ही था। अब और प्रश्न उठता है दूसरा कि द्वार पर ठिटक क्यों गए, मैं तो अंधी हूं, मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मुझे कुछ कहें, मेरी जिज्ञासा शांत करें, फिर लौट क्यों आए, गए इतनी तेजी से फिर इतने उदासी से लौट क्यों आए। कृष्ण ने कहा मेरा एक प्यारा है, एक राजधानी से गुजर रहा है, फकीर है, नंगा फकीर है, अपना एक तारा बजा रहा है, एक तारे के सिवाय उसके पास और कुछ भी नहीं, उस एक तारे में भी मेरे नाम की धुन के सिवाय और कोई धुन नहीं, उसके तन प्राण में मैं ही बसा हूं। लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं, लोग उसे पागल समझ रहे हैं, उसके माथे से खून की धार बह रही और वो एक तारे पर मेरा ही गुणगान किया जाता है। इसलिए आधा कौर गिरा के दौड़ना पड़ा, दौड़ना ही पड़ेगा, इतना असहाय है। रुक्मणी ने पूछा फिर लौट क्यों आए, तो कृष्ण का जब तक मैं द्वार पर पहुंचू तब तक उसने एक तारा नीचे पटक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिए, अब मेरी कोई जरूरत ना रही, अब वो खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया, अब मेरा जाना व्यर्थ है, जरा और रुक जाता तो मैं पहुंच गया होता। मगर अब एक तारा गिर गया है, एक तारे में मेरे उठते नाम की धुन गिर गई है, उसके भीतर से मैं विलीन हो गया हूं, जैसे वो मुझे भूल गया क्षण भर को। मेरो मन बड़ो हरामी, शायद वर्षों से हरि गीत गाता हो और इन पत्थरों की चोट ने सब भुला दिया। मन खिसक आया नीचे, उत्तर देने को तैयार हो गया, पत्थर हाथ में उठा लिए, प्रतिशोध की अग्नि जल उठी, प्रार्थना खो गई, प्रार्थना राख हो गई, कृष्ण को जाने की जरूरत ना रही। ये कथा मधुर है, सूचक है, गहन संकेत है इसमें। तुम जब ढेर की तरह पड़ जाते हो, जब तुम जानते हो मेरे किए कुछ भी ना होगा, पूछते भी नहीं कि मैं क्या करूं, जानते ही हो कि मेरे किए कुछ भी ना होगा, और कब जानोगे, ये कितने जन्मों से कर रहे हो, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब तो उपाय कर लिए, सब तो योग जप तप कर लिए, सब तो विधि विधान कर लिए, यज्ञ हवन पूजा पाठ, कितने मंदिरों में नहीं गए, कितनी मूर्तियों के सामने सिर नहीं पटका, मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहां नहीं गए, सब जगह हो आए हो, चारों धाम कर लिए। अब तो समझो कि मेरे किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि मैं ही कुछ नहीं हूं तो मेरे किए क्या हो सकता है, मैं ही नहीं हूं तो मेरे किए क्या हो सकता है, इस नहीं से कैसे कोई कृत्य निकलेगा, मैं एक शून्य मात्र हूं, मेरी तरह मैं शून्य हूं, परमात्मा की तरह मैं पूर्ण हूं, लेकिन परमात्मा की तरह मेरी तरह नहीं, मेरी तरह तो मैं नपुंसक हूं, परमात्मा की तरह सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन परमात्मा की तरह। और जब परमात्मा है तो मैं नहीं हूं, और जब तक मैं हूं तो परमात्मा नहीं। तो मत पूछो कि क्या करूं। भक्ति उठती तभी है जब सब करना छूट जाता है। और इसका ये अर्थ नहीं कि भक्त कुछ नहीं करता। भक्त का करना छूट जाता है, फिर परमात्मा उससे करता है। भक्त का करना जब छूट जाता है तभी असल करना शुरू होता है, फिर भगवान करता है, फिर भक्त निमित्त मात्र है। बहुत होता भक्त से, लेकिन भक्त करता नहीं होता, माध्यम हो जाता। जैसे बांसुरी वादक बांसुरी को ओंठ पर रखकर गीत गाता है, ऐसे ही भक्त को ओंठ पर रखकर भगवान गीत गाता, भक्त बांसुरी हो जाता। बांसुरी में क्या है? पोला बांस का टुकड़ा है। ऐसा ही भक्त पोले बांस का टुकड़ा हो जाता, कुछ भी नहीं, खाली है। खाली है इसलिए आवाज गीत बन के बह सकती, भरा हो तो फिर नहीं बह सकती। बांस की बांसुरी बनती और किसी लकड़ी की नहीं बनती। क्यों? क्या बांस कोई आखिरी बात है लकड़ियों में? सुंदर लकड़ियां हैं, बहुमूल्य लकड़ियां हैं। बांस भी कोई बात है, बांस की कोई कीमत है, लेकिन बांसुरी बनती बांस से, देवदारू से नहीं, चीड़ से नहीं, टीक से नहीं, लेबनान के सीदारों से नहीं। आकाश छूते बड़े बड़े वृक्ष उनसे नहीं बनती, बनती है बांस की पोंगरी से। क्या खूबी है बांस की, क्या राज है बांस का? जो राज बांस का है वही राज भक्त का है। भक्त बांसुरी बनता है, तपस्वी त्यागी नहीं बनते। तपस्वी त्यागी आकाश में उठे लेबनान के दरख्त, लेबनान के सीदार है, बड़ी उनकी अकड़ है, बड़ा उनका बल है, दूर जमीन में फैली उनकी जड़ें, तब की तपश्चर्या की उनका इतिहास है। भक्त का क्या इतिहास? दीनहीन बांस की पोंगरी। मगर भक्त बनता है परमात्मा के गीत का वाहन। देखो ना मीरा को, जैसा मीरा गाई, कौन तपस्वी गाया है? जैसा मीरा गाई, कौन योगी गाया है? जैसी मीरा नाची, कौन कब नाचा है? मीरा बेजोड़ है। कला क्या है मीरा की? बांस की पोंगरी है। एक बात जान ली कि मेरे के कुछ भी ना होगा, क्योंकि मैं ही नहीं हूं। कृत तो तब उठे जब मेरा होना सिद्ध हो, मेरा होना ही सिद्ध नहीं होता तो कृत कैसे उठेगा? कृत जाता है, मैं जाता है, तब कोई बहने लगता है, अज्ञात लोक से कोई उतरने लगता है, कोई किरण आती दूर से, कोई गीत आता दूर से, कोई नृत्य आता दूर से, भर जाता है तुम्हें, आपूर कर जाता है तुम्हें, इतना भर देता है कि तुम्हारे ऊपर से बहने लगता है, दूसरों को भी मिलने लगता है, बाढ़ आ जाती। तुम ये पूछो ही मत कि मैं क्या करूं, असहाय हो बस असहाय ही रह जाओ। अब करने को मत जोड़ो, करने को जोड़ने का मतलब है कि फिर तुम असहाय ना रहे, फिर कुछ करने लगे। बेबस हो अब बेबस ही हो जाओ, अब इसमें जोड़ो मत कुछ करना, अब पत्थर मत उठाओ अन्यथा आते कृष्ण रुक जाएंगे, दहली पर रुक जाएंगे। अब जो प्रभु कराए उसे होने दो, उससे अन्यथा की चाह भी मत करो, मांग भी मत करो। तब तुम्हें कला आ गई भक्ति की। असहाय अवस्था में पूरी तरह डूब जाना भक्ति का जन्म है। नारद के सूत्रों को पढ़ के तुम भक्ति ना समझ पाओगे। भक्ति का शास्त्र समझना हो असहाय हो जाओ। वो राग छेड़ तरुन्नम की जो करे तस्कील, सुना वो नगमा जो तखलीक सो जो साज करे, तेरा वजूद हकीकत को दे लबासे मजाज, कि जिससे फकर बहार कायनात नाच करे, तेरा गुजर हो चमन को नबीद रंगोबू, गुलों को फसले बहारा से बेन्याज करे, तू ऐसे जी की जमाना ब इख्तियारे तमाम, तेरी गरीबी तेरी बेबसी पे नाच करे, जिससे शिकायतों हो हुस्न से वो इश्क नहीं, हवस है लाला हो गुल में जो इम्तियाज करे, कभी जो कहना पड़े कुछ तो ऐसी बात कहो जो सबको अपने अहले नजर आसनाए राज करे, तू ऐसे जी के जमाना बा इख्तियारे तमाम, तेरी गरीबी तेरी बेबसी पे नाच करे। भक्त ऐसे ही जीता है कि उसकी गरीबी उसकी बेबसी उसकी असहाय अवस्था ही उसका साम्राज्य बन जाती, उसकी समृद्धि बन जाती। खोके ही भक्त पा लेता है, मिटके ही हो जाता है, अपने को ना कुछ जान के परमात्मा को झेलने का हकदार हो जाता है, अपने को पहुंच के मिटा के परमात्मा को पाने की पात्रता बन जाता है। तू ऐसे जी की जमाना बा इख्तियारे तमाम, तेरी गरीबी तेरी बेबसी पे नाच करे। अब तक जमाना नाच करता मीरा पर, राज क्या है मीरा का, मीरा हुई इससे पृथ्वी सुंदर हुई, मीरा हुई इससे मनुष्य के इतिहास में रंग पड़ा, मीरा हुई इससे मनुष्य के सौभाग्य में चार चांद जुड़े। और मीरा का राज क्या है, मीरा ने किया क्या है, महावीर ने 12 वर्ष तपश्चर्या की, मीरा ने क्या किया, बुद्ध ने 6 वर्ष अथक श्रम किया, मीरा ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इसलिए तो जैन से अगर पूछोगे तो जैन कहेगा तपश्चर्या क्या की, उपवास कितने किए, व्रत कितने साधे। योगी से पूछोगे तो वो पूछेगा कि पतंजलि के कितने नियमों का पालन किया, अष्टांगिक योग में क्या क्या साधा, आसन प्राणायाम व्यायाम प्रत्याहार क्या किया। बौद्ध से पूछोगे तो वो कहेगा कि भगवान ने 4 आर्य सत्य बताए, उन 4 आर्य सत्यों को पाने के 8 मार्ग बताए, उनमें से क्या मीरा ने साधा, सम्यक दृष्टि, सम्यक आहार, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि क्या साधा। और मीरा का प्रेम करने वाला कोई भी उत्तर न दे सकेगा। शायद तुम अपने को भीतर भीतर सोचोगे जब कुछ भी नहीं साधा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीरा सिर्फ गीत गाना जानती है और भीतर कुछ भी ना हो। मीरा की सारी कला उसकी असहाय अवस्था में है, भक्त का सारा राज वहां है, कुंजी वहां है, वही तो भक्ति और ज्ञान का भेद है। ज्ञानी कह सकता है यह साधा यह साधा यह साधा, ज्ञानी के पास हिसाब है, ज्ञानी का इतिहास है, भक्त का कोई इतिहास नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई खाता बही नहीं। भक्ति कहता साधा क्या, जन्म जन्म साधा, कुछ भी ना पाया, पाया तब जब सब साधना गया। भक्ति की कोई साधना नहीं होती, असहाय अवस्था में अपने को पूरी तरह छोड़ देना। करोगे भी क्या, जब किए कुछ होता ही नहीं है, तब इसके सिवाय उपाय भी क्या है कि समर्पण कर दो। तुम अभी भी पूछते हो कि मैं क्या करूं, तो 2 में से कुछ एक बात तय कर लो, या तो तय कर लो कि मैं असहाय हूं, मैं बेबस हूं, तब करने को कुछ नहीं बचता, तब तुम्हारी असहाय अवस्था और तुम्हारी बेबसी ही काम कर देगी, जो तुम नहीं कर पाए वह हो जाएगा। और अगर तुम पूछते हो कि मैं क्या करूं, यही तुम्हें करना है, तो फिर मत कहो कि मैं असहाय हूं, मत कहो कि बेबस हूं, फिर करो तप, फिर करो योग, फिर चेष्टा करो, संकल्प करो, फिर महावीर को पकड़ो, फिर पतंजलि को पकड़ो, फिर मीरा तुम्हारे काम की नहीं। लेकिन इसके पहले कि तुम निर्णय करो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, दुनिया में जितने लोगों ने पाया है उनमें संकल्प के मार्ग से जाने वाले बहुत थोड़े लोगों ने पाया है, समर्पण के मार्ग से जाने वाले बहुत लोगों ने पाया है। और सच तो यह है कि जब बिना किए मिल जाता हो तो करना ना समझी। फिर जिन्होंने करके भी पाया है उसमें भी बड़ी सोचने की बात है कि उनको करने से मिला है या करने से इतना ही मिला कि करने से कुछ नहीं होता। बुद्ध के साथ ऐसा ही हुआ, 6 वर्ष तक अथक श्रम किया, सब किया जो किया जा सकता, जो मानवीय है, जो संभव है मनुष्य के लिए, और 6 वर्षों के बाद पाया कि कुछ मिलता नहीं। पहले धन छोड़ दिया, पद छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, आकांक्षा छोड़ दी, वासना छोड़ दी, साधना पकड़ी, 6 वर्ष तक साधना की और रत्ती भर बचाव नहीं किया। ऐसे नहीं कि कुनकुनी कुनकुनी, 100 डिग्री पर उबले। जिन गुरुओं के पास गए उन गुरुओं ने ही कहा कि भाई जितना हम जानते थे बता दिया और तुमने कर भी लिया और नहीं हुआ तब हम मजबूर, अब तुम कहीं और जाओ। कोई गुरु ये नहीं कह सका कि तुमने किया ही नहीं जो मैंने कहा इसलिए नहीं हुआ। 6 वर्ष में बहुत गुरु, लेकिन हर गुरु ने एक दिन हाथ जोड़ के बुद्ध को कहा कि आप कहीं और खोजें, जो मेरे पास था वो मैंने बता दिया और तुमने वो पूरा कर भी लिया, फिर तुम्हें नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। सारे गुरु छूट गए और एक दिन वैसी घड़ी भी आई, वैसे बोध का परम क्षण भी आया। बोधि वृक्ष के नीचे उस पूर्णिमा की रात बैठे बैठे बुद्ध को समझ आई कि मेरे किए कुछ नहीं होता है, सब मैंने कर लिया, करने को कुछ बचा नहीं, अब करने को भी जाने दो। और ये बोध भी एक छोटी सी घटना से आया। स्नान करने उतरे हैं निरंजना नदी में, इतने कमजोर हो गए क्योंकि बहुत दिन से उपवास कर रहे हैं, किसी मूढ़ ने बता दिया कि बस एक चावल का दाना रोज लेना, तो एक चावल का दाना रोज ले रहे हैं 3 महीने से, शरीर बिल्कुल हड्डी हड्डी हो गया है। उस समय की एक प्रतिमा किसी ने बनाई है तो सिर्फ हड्डियां दिखाई पड़ती हैं उस प्रतिमा में, चमड़ी रह गई है हड्डियों पर चढ़ी, मांस सब खो गया है, पेट पीठ से लग गया है, बिल्कुल अस्थि पंजर रह गए। निरंजना में स्नान करने उतरे हैं लेकिन इतने कमजोर हैं कि स्नान करने से थक गए और निरंजना के बाहर निकलने की सामर्थ्य नहीं मालूम होती, शक्ति नहीं मालूम होती, तो एक वृक्ष की जड़ को पकड़ के लटके रह गए। उसी वृक्ष की जड़ को पकड़ के लटके हुए ये ख्याल आया, इस छोटी सी दीनहीन नदी को पार नहीं कर पाता, निरंजना कोई बहुत बड़ी नदी नहीं, और गर्मी के दिन थे, बिल्कुल सूखी साखी हालत होगी, इस क्षीण देह नदी को पार नहीं कर पाता हूं, इतना कमजोर हो गया, और भव सागर पार करने चला, ये कैसे होगा। किसी तरह निकल पाए नदी से, लेकिन वो क्रांति बन गई बात। उस रात सब तपश्चर्या छोड़ दी, उस रात सब साधना छोड़ दी, सब योग भी त्याग दिया, भोग तो त्याग ही चुके थे, उस रात योग भी त्याग दिया। अब ये बात समझना कि भोगी भी अहंकार से जीता है और योगी भी अहंकार से जीता है। भोगी का अहंकार बाहर की तरफ दौड़ता है, योगी का अहंकार भीतर की तरफ दौड़ता है, मगर अहंकार तो रहता ही है, और जब तक अहंकार है तब तक मिलन कैसा। उस रात क्रांति हो गई, भोगी का अहंकार तो जा ही चुका था, धन पाना है पद पाना है ये तो जा चुका था, आज वो वासना भी चली गई कि परमात्मा पाना है, मोक्ष पाना है, वो वासना भी चली गई, कुछ पाना ही है ये बात ही व्यर्थ हो गई, पाया कुछ जा नहीं सकता, सब कर लिया कुछ मिलता नहीं। उस दिन असहाय अवस्था पूर्ण हो गई। बुद्ध निढाल होके पड़ रहे वृक्ष के तले। उस रात गहरी नींद आई जैसी जन्मों में ना आई होगी, क्योंकि जब कोई चिंता ही नहीं रही, पाने को कुछ न रहा, तो नींद की गहराई तुम समझ सकते हो। उस रात सुसुप्ति घटी और सुबह जब आंख खुली, रात का आखिरी तारा डूबता था। उस तारे के डूबने के साथ ही बुद्ध का सारा अहंकार डूब गया, क्योंकि आज पहली दफे चित्त शांत था, प्रफुल्लित था, प्रसाद पूर्ण था। धीमे धीमे स्वर उठ रहे थे, ऐसा कभी ना हुआ था। भीतर रोशनी फैल रही थी, ऐसा कभी ना हुआ था। और ये बिना किए हुआ, ये करने से नहीं हुआ। उस क्षण सारा अहंकार विसर्जित हो गया, बुद्ध ने पाया। अब सवाल उठ सकता है कि बुद्ध ने श्रम करके पाया? 6 वर्ष मेहनत तो की थी, ये पक्का है, लेकिन क्या 6 वर्ष की मेहनत से पाया? ये बात पक्की नहीं। पाया तो उस दिन जिस दिन सब श्रम छूट गया। इस जगत में जो भी घटनाएं घटी, अंततः चाहे ज्ञानी को घटती हो चाहे भक्त को, महावीर के संबंध में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है कि उन्होंने कैसे पाया। लेकिन मेरे देखे सिवाय इसके अतिरिक्त कोई उपाय पाने का नहीं। महावीर ने 12 वर्ष श्रम किया होगा और अंतिम दिन उस श्रम से भी छूट गए होंगे, क्योंकि श्रम तो अहंकार का ही है। अंतिम दिन उस श्रम से भी छुटकारा हो गया होगा, अंतिम दिन शांत रह गए होंगे। कुछ करना ना बचा होगा, कुछ करने वाला ना बचा होगा, तभी घटना घटी होगी। इसे मैं अपनी भीतरी साक्ष्य के आधार पर कहता हूं, यद्यपि जैन शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं। जब भी यह घटना घटती है, तभी इसी भाव दशा में घटती। भक्त शुरू से ही इस पे चल पड़ता है, ज्ञानी अंत में चल पाता है। मीरा पहले से ही इस पे चल पड़ी, बुद्ध 6 वर्ष बाद चले। तुम्हारी जैसी मर्जी हो, मगर तय कर लो, इस प्रश्न में तुम्हारे 2 मन हैं। एक कहता असहाय, एक कहता क्या करूं। तुम किसके साथ जाना चाहते हो तय कर लो, और अपने को धोखा मत देना। इसलिए मत तय कर लेना कि चलो असहाय ही हो जाए, अगर इस तरह मिलता हो तो ये तो बड़ी सुगम बात हुई, चलो आज असहाय होके बैठ जाए, ढूंढ लें कोई बोधि वृक्ष, बिल्कुल निढाल हो जाए और कह दें साफ जोर से कि भाई करने से तो मिलता नहीं, और फिर राह देखें रात भर कि अब मिला, अब मिला, तब मिला, फिर सुबह आंख खोलें देखें आखिरी तारा डूब रहा है और अभी तक नहीं मिला, तो नहीं मिलेगा। और सुबह उठ तुम अपने घर आ जाओगे, फिर अपनी दुकान खोल लोगे, ये सब बेकार है। बुद्ध को भी मिला हो संदिग्ध हो गया। पाने की आकांक्षा से ऐसा मत कर लेना, नहीं तो वो झूठी बात होगी। तुम बीच बीच में आंख खोल खोल के देखते रहोगे अभी तक आया कि नहीं आया, तनाव तो बना ही रहेगा, सुसुप्ति लगेगी ही नहीं, विश्राम होगा ही नहीं। अगर अभी करने की खुजलाहट बचे हो थोड़ा कर ही लो, मतलब थोड़ा पाप और बचा है, इसलिए तो पाप को कर्म कहते, थोड़ा कर्म और बचा है कर ही लो, थोड़ा और करने का उपद्रव इसको झेल ही लो। फिर तुम क्या करते हो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, हिंदू के ढंग से करते हो कि मुसलमान के ढंग से, कि ईसाई के ढंग से, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कुछ करना है तो कर ही लो अभी, इससे तुम तभी छूट पाओगे जब तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारे लिए अंतिम रूप से कह जाएगा कि करने से कुछ नहीं होता है, कर करके ही तुम हार हार के ही, विफल हो के ही जानोगे कि करने से कुछ नहीं होता है। जिस दिन ये बात 100% तुम्हारे प्राणों में समा जाएगी और तुम गिर जाओगे निढाल होकर, जहां गिरोगे वहीं बोधि वृक्ष बन जाएगा, और तुम अपने ढंग से गिरोगे और तुम्हारा वृक्ष अपना होगा। बुद्ध का वृक्ष अपना है, बुद्ध के गिरने का ढंग अपना है, मगर गिरना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम जिस दिन गिरोगे उसी दिन परमात्मा उठता है। परमात्मा प्रतीक्षा कर रहा है कि कब तुम अपने पे भरोसा छोड़ दो। जिसे अपने पे भरोसा है उसे परमात्मा पर भरोसा नहीं। जिसे परमात्मा पर भरोसा है वो क्या खाक फिक्र करेगा इस बात की कि मैं क्या करूं। वो कहता तू कर, तू करने वाला है। और ध्यान रखना, फिर तुम्हें सचेत कर दूं कि ये बात आलस्य से नहीं उठनी चाहिए कि तू कर, मैं कौन करने वाला हूं। ये बात आलस्य से नहीं उठनी चाहिए, ये बात अनुभव से उठनी चाहिए कि मेरे किए कुछ भी नहीं होता। ये असहाय अवस्था से उठनी चाहिए। आलस्य और असहाय अवस्था में फर्क है। आलसी तो होशियार है, वो तो दूसरे से काम लेना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो सोचता है कि मेरे किए कुछ ना होगा। वो कहता जब तक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलती हो तब तक काहे को अपने कष्ट उठाना। तो दूसरे के कंधे पे रख के चला ले बंदूक। मैं जब विद्यार्थी था विश्वविद्यालय में तो मेरे एक अध्यापक थे, परम आलसी। मेरे जो विभाग अध्यक्ष थे उनका मुझसे भी बहुत लगाव था और उन अध्यापक से भी बहुत लगाव था। वो अध्यापक भी पहले उनके विद्यार्थी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो ये बड़ा आलसी है और बड़ी तकलीफ में रहता है, अच्छा ये होगा कि तुम दोनों ही साथ रहो। मैंने कहा जैसी मर्जी। वो आलसी तो पक्के थे। दोनों हम साथ रहे। उन्होंने पहले दिन मुझसे कहा कि सुबह दूध लेने कौन जाएगा। मैंने कहा जो पहले उठे। वो बोले तब ठीक, 8 बज गए कोई उठे ना, मैं भी उनको आंख खोल के देख लूं, वो भी मुझे आंख खोल के देख लूं। 9 बज गए, वो जरा बेचैन होने लगे क्योंकि 10:30 बजे उन्हें कक्षा लेने जाना। मैं तो विद्यार्थी था, गया ना गया चलेगा, उनकी तो नौकरी का सवाल था। 9:30 बजने लगे, अब वो काफी तेजी से करवट बदलने लगे। मैंने उनसे कहा कितनी करवट बदलो, दूध लेने जाना ही पड़ेगा। आज चाहे जिंदगी भर इसी बिस्तर पर रहना पड़े, मैं उठने वाला नहीं। तब वो घबरा के उठे, तब भागे दूध लेने गए। प्रधान को उन्होंने जाकर कहा कि ये साथ नहीं चलेगा, ये तो मामला बहुत कठिन है, इससे तुम अकेले ही बेहतर। जब मर्जी हुई तब अपना दूध ले आता था, या नहीं भी लाना हुआ तो नहीं लाता था। मैंने अपने प्रधान को कहा कि अब हमें अलग ना करें, मैं इन्हें रास्ते पर ले आऊंगा, ये 2-4 दिन में रास्ते पर आ जाएंगे। इनको दूसरे के कंधे पर बंदूक रख चलाने की आदत हो गई। आलस्य को तुम मत समझ लेना कि असहाय अवस्था है। आलस्य तो चालाकी है, धोखा है, बेईमानी है। तो ये मत सोचना कि चलो ठीक है करने से बचे, झंझट मिटी। अब यही कह दें साफ कि हे प्रभु आओ, धाओ धाओ। देखो इधर भक्त मरा जा रहा, हालांकि तुम जानते कौन मर रहा है, किस कहां की बातों में पड़े हो। भीतर तुम यही कह रहे हो कि कौन मर रहा है, और भीतर तुम ये भी जान रहे हो कौन आने वाला है। विवेकानंद अमेरिका में एक गांव में बोले तो उन्होंने जीसस का प्रसिद्ध वचन उद्धृत किया है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, श्रद्धा से पहाड़ भी हटाए जा सकते हैं। एक बूढ़ी औरत बुढ़िया सामने ही बैठी थी, बूढ़ों के सिवा तो कोई धर्म प्रवचन सुनने जाता भी नहीं। वो सामने बैठी थी, वो बड़ी प्रसन्न होने लगी क्योंकि उसके मकान के पीछे एक छोटी पहाड़ी थी और उस पहाड़ी की वजह से न हवा आ पाती थी न सूरज की रोशनी आ पाती थी। वो बड़ी परेशान थी कि कैसे ये पहाड़ी उससे छुटकारा मिले। उसने कहा तो बड़ा अच्छा है, श्रद्धा से ही हट सकता है, कह दिया परमात्मा से, श्रद्धा भाव से हट जाएगा। वो भागी घर गई, उसने एक बार आखिरी बार खिड़की में से झांक के पहाड़ी को देखा कि एक बार तो और देख लो फिर तो हट ही जाएगी। फिर खिड़की बंद करके वो वहीं बैठी और उसने कहा हे प्रभु श्रद्धा पूर्वक कहती हूं हटा ले इस पहाड़ को। फिर दो तीन मिनट बैठी रही, फिर उसने खिड़की खोल के देखी हटा के नहीं, पहाड़ वहीं के वहीं था। उसने कहा धत तेरी की, मुझे पहले ही से पता था कहीं कोई पहाड़ वहाड़ हटना है। मगर अगर पहले से ही पता था कि कहीं पहाड़ हटना है तो श्रद्धा कहां? श्रद्धा से पहाड़ हटते हैं, लेकिन श्रद्धा में संदेह होता ही नहीं। अगर पहाड़ ना हटे तो यही समझना कि श्रद्धा नहीं। और सच तो यह है अगर श्रद्धा पूरी हो तो तुम पहाड़ हटाना भी ना चाहोगे, क्योंकि श्रद्धा की परीक्षा लेने का मतलब ही यह होता है कि संदेह है। पहाड़ हटाना क्यों चाहोगे? जहां परमात्मा ने बनाया ठीक ही जगह बनाया होगा, तुम हटाना क्यों चाहोगे पहाड़? पहाड़ की तो बात अलग, तुम एक तिनका ना हटाना चाहोगे। जहां उसने बनाया जैसा उसने बनाया वैसा ही ठीक, मैं उससे ज्यादा बुद्धिमान थोड़ी हूं। तो श्रद्धा पहाड़ हटा सकती है, लेकिन श्रद्धा तो तिनका भी नहीं हटाना चाहेगी, और अश्रद्धा से तो तिनका भी नहीं हट सकता, और अश्रद्धा पहाड़ भी हटाना चाहती। अश्रद्धा श्रद्धा का बाना पहन लेती। तो ख्याल रखना आलस्य कहीं असहाय अवस्था का बाना ना पहन ले, नहीं तो धोखा हो जाएगा। तो बहुत बहुत संभल के चलने की बात है। करने पर भरोसा हो तो करो, खूब करने के लिए उपाय पड़े, प्राणायाम करो, आसन करो, सिर के बल खड़े हो, माला जपो, मंदिरों में जाओ, उपवास व्रत, हजार ढंग है करने के, ढंग ही ढंग है करने के, कर लो। मगर अगर असहाय अवस्था समझ में आने लगी हो अब तो मत पूछो कि क्या करूं, अब असहाय हो जाओ, करने को कुछ बचा नहीं, करने वाला नहीं बचा। क्रांति घटती है उस दशा में, अपूर्व है दशा वह, आलस्य की नहीं, अकर्मण्यता की भी नहीं, अहंकार शून्यता की है। और तब ऐसी घड़ी आ सकती है, तू ऐसे जी की जमाना बाय अख्तियारे तमाम, तेरी गरीबी तेरी बेबसी पर नाच करे। उसी गरीबी उसी बेबसी से परमात्मा मिल सकता है, तुम्हारा जीवन अपूर्व रूप से प्रसाद से भर सकता है, तुम्हारे जीवन में उत्सव फूल खिल सकते हैं, गीत झर सकते हैं। तुम भी एक दिन पद घुंघरू बांध मीरा की भांति नाच सकते हो, लेकिन ध्यान रहे परमात्मा ही नाचेगा तुम्हारे भीतर, पैर तुम्हारे होंगे, नाच परमात्मा का ही होगा।
आज के प्रोग्राम में साइलेंट म्यूजिक मिलरिपा आशिक चिन्मय डंस्टर और म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो से लिया गया है। ओशो रेडियो के एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
Singing, I can't stop enjoying this life.